જયપુરમાં પૂજ્ય ભાઈશ્રીની તત્વ ચર્ચા.
નિજ સ્વભાવ સાધન હૈ યા સાધ્ય?
નિજ સ્વભાવ
સાધન હૈ યા સાધ્ય?
નિજ સ્વભાવ ધ્યેય હૈ. નિજ સ્વભાવ ધ્યેય હૈ ઓર સાધન હૈ મોક્ષ માર્ગ ઓર સાધ્ય હૈ મોક્ષ.
પ્રશ્ન: યદિ આત્મ સ્વભાવ સુખ કા સાગર હૈ તો વર્તમાન મેં ઉસ સુખ કા અંશ ભી અનુભવ મેં ક્યું નહીં આતા?
ઉસકો શ્રદ્ધામાં નહીં હૈ કે આત્મા સુખ કા સાગર હૈ. એસી શ્રદ્ધા સે અનંતકાળ સે ભ્રષ્ટ હો ગયા હૈ. વર્તમાન મેં મેં દુઃખી હું, આત્મા દુઃખી હૈ એસા માનતા હૈ, ઇસલિયે સુખ કા સ્વાદ નહીં આતા. આત્મા દુઃખી હુઆ હી નહીં, હોગા ભી નહીં. ઓ દુઃખ હોતા હૈ વો આશ્રવ તત્વ મેં હોતા હૈ. જીવ તત્વ આશ્રવ તત્વ સે ભિન્ન હૈ, વો સુખમય હૈ. એસા અંતર્મુખ હોકર શ્રદ્ધાન કરે તો પર્યાય મેં સુખ પ્રગટ હોતા હૈ. મેં દુઃખી હું હૈ શ્રદ્ધા ક્યાં કરતા હૈ? શ્રદ્ધા કી ભૂલ હૈ વો.
પ્રશ્ન: સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ અપને મુંહ સે સ્વયં યહ નહીં કહેતા કે મેં સમ્યક દ્રષ્ટિ હું, કિંતુ અગર કોઈ દૂસરા વ્યક્તિ ઉસે સમ્યક દ્રષ્ટિ કહે તો ક્યા વે ઇનકાર કરેગા અથવા વે કુછ નહીં કહેગા?
કેને મે ઓ ચર્ચા લંબ જાતી હૈ, લંબાઈ લંબાઈ જાય છે. ક્યા હોતા હૈ? ઇસલિયે લંબી હો જાતી હૈ. હા બોલે તો તકલીફ, ના બોલે તો તકલીફ, મૌન રહેતા હૈ બસ. હા બોલે તો કભી હુઆ, કોણ સે ગામ મેં હુઆ, કિતને ટાઈમ મેં અનુભવ હોતા હૈ આપકો, બોલો. ઇસકી હો મૌન રહેતા હૈ બસ.
પ્રશ્ન: સમય સાર સર્વ વિશુદ્ધ અધિકાર કે પ્રારંભ મેં આત્મા કા દ્રવ્ય સ્વભાવ શુદ્ધ શુદ્ધ હૈ, યહાં શુદ્ધ શુદ્ધ દો બાર પ્રયોગ કરને કા ક્યા અસર હૈ?
ભાવ કર્મ સે ભિન્ન હૈ ઇસલિયે શુદ્ધ હૈ, અને દ્રવ્ય કર્મ સે ભિન્ન હૈ ઇસલિયે શુદ્ધ હૈ. શુદ્ધ શુદ્ધ દો શબ્દ કહેને સે ઉસકી પરિપક્વતા બતાની હૈ, દ્રઢતા કે લિયે શુદ્ધ શુદ્ધ હી હૈ. એસા ભાવ કર્મ સે ભિન્ન અને દ્રવ્ય કર્મ સે ભી ભિન્ન હૈ ઇસલિયે શુદ્ધ શુદ્ધ હૈ. દો દફે કહા, કળસ મેં કહા.
નિયમસાર મેં સંવર નિર્જરા મોક્ષ તત્વ કો ભી સાર રૂપ નહીં કહા, ઉસમે ક્યા રહસ્ય હૈ?
ઓ સંવર નિર્જરા ઓર મોક્ષ તત્વ હૈ, એક તો એક પર્યાય હૈ, ક્ષણવર્તી હૈ, અનિત્ય પર્યાય હૈ. દૂસરા જો સંવર નિર્જરા ને મોક્ષ હૈ વો સાપેક્ષ હૈ, ઉસમે ભાવ કર્મ કા અભાવ કી અપેક્ષા ઓર દ્રવ્ય કર્મ કા અભાવ કી અપેક્ષા હોને સે ઓ પરિણામ સાપેક્ષ હૈ. જીવ તત્વ નહીં હૈ, જીવ કા પરિણામ હોને પર ભી ઓ જીવ તત્વ નહીં હૈ, ઇસલિયે ઉસકો સાર નહીં કહા. સાર યાને ઉપાધિ તત્વ નહીં હૈ, જાનને લાયક હૈ મગર ઓ મેં હું એસી ઉસમે આત્મબુદ્ધિ નહીં કરના, ઇસલિયે સાર નહીં હૈ. સાર તો એક ઉપાધિ તત્વ હૈ, પરિણામ માત્ર સે ભિન્ન. વો સાર, સાર કા અર્થ લિયા હૈ કૌષ્ટિકા મેં કે જો શુદ્ધ આત્મા હૈ વો ઉપાધે વો સાર હૈ બસ.
પ્રશ્ન: યદિ દ્રવ્ય કી પ્રસિદ્ધિ પર્યાય સે હોતી હૈ તો દ્રવ્ય સે પર્યાય ઊંચી હો ગઈ?
દ્રવ્ય સે પર્યાય ઊંચી નહીં હોતી હૈ. ચક્રવર્તી કો કોઈ પ્રસિદ્ધ કરે તો ક્યા ચક્રવર્તી સે ઊંચા હો ગયા? હો નહીં હોતા હૈ. એ ચક્રવર્તી હૈ, કોઈ પ્રસિદ્ધિ ક્યા તો ક્યા ઊંચા હો ક્યા ચક્રવર્તી સે? એસે પર્યાય અપની પ્રસિદ્ધિ કરતી હૈ એક સમય કે પર્યાય, તો ક્યા પર્યાય ઊંચી હોગી દેવ સે?
ऊंचा तो मुख्य ऊर्ज तो भगवान आत्मा रहता है, हर समय हर समय उसकी ऊर्जता उसकी मुख्यता कभी गौण होनी होती है। व्यवहार का अति निषेध करना उचित नहीं है ऐसा पंच संग्रह में कहा है, उसका क्या आता है?
यानी व्यवहार का क्या शब्द?
व्यवहार का अति निषेध करना,
निषेध करना वो तो आ गया नहीं उसमें, वो तो आ गया नहीं, अति निषेध नहीं करना, इसका क्या अर्थ? कि आत्मा ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, चारित्र रूप है, ऐसा व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन होता है, इसलिए अति निषेध नहीं करना। आश्रय के लिए निषेध करने जैसी चीज है, मगर जो जीव आत्मा का स्वरूप जानता नहीं है इसके लिए इतना वहां तक निषेध नहीं करना। आश्रय के लिए तो सर्वथा निषेध है, मगर समझाने के लिए अति निषेध नहीं करना। अति निषेध करने का तारा भाव जो आ जावे तो राग आत्मा से अत्यंत विलय, अति निषेध कर दे, बाकी आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, उसका अति निषेध नहीं करना। समझाने के लिए वो उसके द्वारा आत्मा का समझन आ जाता है।
जीव के चारित्र गुण में अंशता शुद्धता तथा अंशता अशुद्धता, क्या दोनों पर्याय एक साथ हो सकती हैं?
एक समय में एक पर्याय उत्पन्न होती है, वो एक समय की एक पर्याय में साधक का थोड़ा अंश अंतर्मुख रहता है, ने थोड़ा अंश बहिर्मुख रहता है, इसलिए वितराग धारा और राग धारा एक साथ में रहती है। अज्ञानी के पास राग धारा है एक ही ली, और केवल परमात्मा के पास वितराग धारा एक ही है, और साधक को दो धारा, ज्ञान धारा और कर्म धारा साथ में रहती है।
धर्म गुण और शक्ति में क्या अंतर है?
शक्ति और गुण तो एक प्रकार का है, मगर धर्म धर्म में गुण को भी धर्म कह सकता है, गुण को तो धर्म कह जाता है मगर धर्म को गुण नहीं कहा जाता है, ऐसा एक श्लोक है, गुणा स्वभाव भवन्ति स्वभाव गुणा न भवन्ति, यानी गुण को तो स्वभाव कहो धर्म कहो कह सकते हैं, मगर नित्य अनित्य जो अपेक्षित धर्म है, एक अनेक नित्य अनित्य है ना, वो धर्म है, गुण नहीं है। नित्य और अनित्य पर्याय अपेक्षित द्रव्य अपेक्षित धर्म है, नित्य द्रव्य अपेक्षित धर्म, अनित्य पर्याय अपेक्षित धर्म है, धर्म का परिणाम नहीं होता है, गुण का परिणाम होता है।
श्रुत ज्ञान सापेक्ष होता है, गुण निरपेक्ष होता है। श्रुत ज्ञान में ही नए क्यों होते हैं, अन्य ज्ञानों में नहीं?
नहीं, क्योंकि विशेष कर्कण रूप है, शुद्ध ज्ञान बलवान है, मति ज्ञान से वो ताकतवान है, इसलिए उसमें नई की उत्पत्ति होती है।
नयों को इंद्रजाल क्यों कहा जाता है?
नई में जो रुक गया तो इंद्रजाल हो गया, नई को छोड़कर पक्षातिक्रांत हुआ तो अनुभूति होती है। नई पहली भूमिका में समझने लिए के साधन है, आज भजन में आया था, एक भाई मिला, कल मिला था भाई के बंगले पर, तो कल ध्यान की चर्चा बहुत चली थी, उसका विचार जाना था, मैंने मेरा विचार कह दिया, बाद में आज वही प्रकरण फजर में आया तो बाहर निकलकर कहा कि आज का व्याख्यान से कल की बात बराबर समझ में आ गई। नई विकल्प के द्वारा निर्णय होता है, मगर नई के द्वारा अनुभव नहीं होता है, निर्णय तक तो आता है मगर अनुभव नई से नहीं होता है, अनुभव नई अतीत है, ज्ञान से अनुभव होता है, नई से नहीं।
प्रश्न, अनुभव द्रव्य का है या पर्याय का?
पर्याय का अनुभव होता है, उपचार से द्रव्य का अनुभव हुआ ऐसा आत्मा का अनुभव हुआ कहा जाता है, बाकी तो सचमुच अनुभव होता है वो तो क्रिया में पर्याय में होता है, द्रव्य का अनुभव नहीं होता है। द्रव्य का आश्रय से अनुभव हुआ तो कहा जाता है कि आत्मा का अनुभव आज हुआ, बस
आत्मा के भिन्न भिन्न गुण ध्यान में आते हैं, तथापि अभेद ध्यान में क्यों नहीं आता?
अभेद को ध्यान में लेता नहीं है, भेद में अटक जाता है, इसलिए अभेद ख्याल में नहीं आता, तो उसका दोष है। ये ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र सुख है, बाद में एक एक गुण पर लक्ष्य न करके गुणी पर लक्ष्य आना चाहिए। तो गुण भेद का लक्ष्य से उत्पन्न हुआ जो नई का विकल्प छूट जाता है, विकल्पातीत हो जाता है, वो ये अपना पोता का काम है, पोतानु काम छे। गुण भेद करीने अटके छे, खुद का काम, गुण भेद करीने अटके छे, ये अटकना नहीं चाहिए, गुणी पर जाना चाहिए, गुण के द्वारा गुणी शोध लेना चाहिए। जैसे सोना पीड़ा है, चिकना है, उसके द्वारा सारा सोना लक्ष्य में लेता है, तो गुण भेद लक्ष्य में से छूट जाता है, गुणी का ज्ञान होने से गुण का भी ज्ञान अंदर में गर्भित आ जाता है, जुदा जुदा गुण का ज्ञान करने की जरूरत नहीं पड़ती।
नियम सार में कहा है आत्मा निरंतर सुलभ है, इसका क्या अर्थ है?
निरंतर सुलभ है, जब भी तुम दर्शन की इच्छा कर तो दर्शन देता है, जब भी तेरी इच्छा हो तो दर्शन देता है। देखो एक दफे रतिभा आया कि नहीं आया, राजकोट का सेक्रेटरी साहब है हमारा, एक दफे उसने पूछा, घर पर चर्चा चलती थी कि ये ज्ञानी धर्मात्मा संतो बहुत प्रशंसा करता है, आत्मा ऐसा है ना, आत्मा ऐसा है ना, आत्मा ऐसा है, कोई ठाकता ही नहीं है प्रशंसा करते करते, ज्ञानी आत्मा की, शुद्ध आत्मा का महिमा करता है तो ठाकता नहीं है। तो ऐसा बड़ा आत्मा जो है, तो वो आत्मा दिखाई क्यों नहीं देता है? नहीं, आत्मा क्या करता है 24 घंटे, ऐसा प्रश्न, आत्मा 24 घंटा करता क्या है? मैंने कहा दर्शन देने का काम करता है 24 घंटे के लिए, मगर किसको दर्शन लेवे, इसको उसका काम दर्शन देने का है 24 घंटा, मगर दर्शन लेवे उसको देवे ने। ये प्रतिमा जी इधर है मंदिर, कहीं बाहर से आता है, जाता है, चले जाता है, उसको दर्शन नहीं होता है प्रतिमा जी का, अंदर आवे तो जब दर्शन करता है तो प्रतिमा जी ऐसा नहीं करता है, ऐसा कर लेता है, ऐसा ही रहता है, कोई भी आओ दर्शन करो, ऐसे ये भगवान आत्मा 24 घंटा हाजरा हजूर है दर्शन देने के लिए, मगर लेने वालों को देते हैं, जो लेते नहीं है उसको कहते दे, तो दूसरा दर्शन में रुक गया। हाँ, यहां सुधी बहिर्मुख ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान, उसका कारण भी श्रद्धा में ऐसा है कि मैं पर को जानने वाला, वो श्रद्धा विपरीत है, पर को जानने की जो रुचि है इसलिए उपयोग बाहरी घूमता है। जब आत्मा को जानने की रुचि जगेगी तब उपयोग वहां से हटकर अंतर्मुख सहज हो जाएगा।
प्रश्न, क्रोधादि भाव आत्मा से भिन्न वस्तु है ऐसा कहा है, यहाँ क्रोधादि को वस्तु क्यों कहा है?
वस्तु क्यों कहा है कि ज्ञान का ये है इसलिए वस्तु है, भले क्षणिक है, क्षणिक है, मगर ये है ना, भाव है, अस्थि रूप है, क्रोध क्रोध है वो अस्थि रूप है, तो क्रोध है तो क्रोध को वस्तु कहते हैं, ज्ञान का ज्ञेय की अपेक्षा वस्तु का अर्थ इसमें आनंद गुण है ऐसा नहीं लेना है, बस जानने में आता है।
प्रश्न, अनुभूति को सम्यक दर्शन का
लगाने, नव तत्व में नव पदार्थ कहा ने, तो नव पदार्थ में आश्रो को भी पदार्थ के दिया ने, पदार्थ किया ने, बस तो ज्ञान का ज्ञेय है, वस्तु है, वस्तु कह दिया। बोलो,
अनुभूति को सम्यक दर्शन का लक्षण कह सकते हैं या नहीं?
सचमुच अनुभूति है वो तो ज्ञान की पर्याय है, तो भी अविनाभाव रूप होने से उसको भी लक्षण कह सकते हैं, बाकी सचमुच तो प्रतीति लक्षण है, सम्यक दर्शन का लक्षण है वो प्रतीति है, मगर अनुभूति के काल में प्रतीति आती है तो अनुभूति को भी सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाता है।
प्रश्न, ध्रुव स्वभाव के साथ निर्मल पर्याय को अभेद करके दृष्टि का विषय मानने में क्या आपत्ति है?
बड़ी आपत्ति, मिथ्यात्व का दोष आता है। ध्रुव स्वभाव के साथ निर्मल पर्याय को अभेद कर देवे तो दृष्टि का विषय होने में आपत्ति क्या आती है कि दृष्टि का विषय बनता ही नहीं है। तो दृष्टि का विषय बने नहीं तो दृष्टि निर्मल होती नहीं है, मिथ्या पर रह जाता है। वो यही है मगर ध्येय नहीं है। पर्याय से अभेद जो ध्रुव है, अभेद नहीं से आत्मा है, मगर वो ज्ञान का ध्येय है, ध्यान का ध्येय नहीं है। उपाधि तो नहीं है, पर्याय सापेक्ष जो द्रव्य है वो उपाधि नहीं होता है। पर्याय निरपेक्ष जो आत्मा है वो उपाधि तत्व है। पहले निरपेक्ष लेना चाहिए, बाद में सापेक्ष की बात करो। पहला पूंजी बनाओ, बाद में ब्याज आता है। ब्याज भी, ब्याज का क्या अर्थ है कि सम्यक दर्शनान चारित्र का जो परिणाम प्रकट होता है इसमें आनंद आता है वो व्याज है। शुभ राग व्याज नहीं है। पूंजी तो है भगवान आत्मा, वो दृष्टि में पहले ले लो तो बाद में सम्यक दर्शनान चारित्र का परिणाम मोक्ष मार्ग प्रकट होता है तो वो व्याज है। मगर वो मूड़ी नहीं है, पूंजी नहीं है। सम्यक दर्शनान चारित्र का परिणाम पूंजी का व्याज है, बाकी राग तो व्याज भी भैया नहीं है, क्योंकि पूंजी के आश्रय से नहीं होता है।
प्रश्न, शरीर और आत्मा को एक बतलाने वाला व्यवहार में शरीर और आत्मा को भिन्न बतलाने वाले निश्चय ने का प्रतिपादक कैसे है?
ऐसे है ने कि कोई आत्मा बिल्कुल आत्मा को पहचानता ही नहीं है, इसको स्थूल अपेक्षा से कथन की पद्धति का स्थूल कथन और सूक्ष्म कथन दो प्रकार का चलता है। तो कोई जानता ही नहीं है आत्मा को, उसको कहे जाने सो आत्मा, देखे सो आत्मा, ज्ञान हो आत्मा, नित्य ज्ञान को प्राप्त करे आत्मा, तो समझता नहीं है। तो कहते हैं कि मनुष्य जीव है, एक इंद्री जीव है, दो इंद्री जीव है, तीन इंद्री जीव है, देव जीव है, ऐसा कि उसके अंदर आत्मा के उपचार करके उसको ये मनुष्य को जीव कहा जाता है। इसे मोक्ष मार्ग प्रकाश में कहा है, बाद में कहा कि वो समझाने के लिए सचमुच मनुष्य को जीव नहीं मानना, ऐसा लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाश में।
सर्वोपयोग
वस्त्रा क्या है कि ये जो शरीर वाला जीव है, शरीर की सापेक्षता से जीव का ज्ञान कराता है, तो उसमें इतना है के वो पाप की प्रवृत्ति से बच जाता है। जैसे राख को मसलने से पाप नहीं लगता है, ऐसे एकांत आत्मा और शरीर को भिन्न माने और उसको हिंसा से पाप नहीं है ऐसा माने तो निर्गत प्रवृत्ति है। हिंसा की प्रवृत्ति करने के लिए भेद ज्ञान नहीं बताया तो इतना इतना बचाव उसका होता है कि पाप से बच जाता है। किसी को मारने के जैसे चलते रस्ते में तो ये कीड़ा मकोड़ा चलता है तो ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा नहीं चलना चाहिए, नीचे देखकर चलना चाहिए। वो जीव है, भगवान आत्मा है, वो शरीर को उपचार से व्यवहार से जीव कहने का भी थोड़ा प्रयोजन है। जिनागम में जो बात आती है उसमें कोई जगह पर तो लिमिटेड प्रयोजन है, अरे कोई जगह अनलिमिटेड प्रयोजन की बात करते हैं। जहाँ देह और आत्मा एक ऐसा व्यवहार दर्शाया है सर्वज्ञ भगवान ने, क्यों के नितर तो निर्गल प्रवृत्ति हो, देह को मारने से क्या लाभ नुकसान है, तो उसको मरता है, आयुष कर्म क्षय होता है तो मरता है, ऐसा नहीं है मर जाएगा वो तो निश्चयाभासी का लक्षण है। वो दया से ही गया, व्यवहार दया से गया, नीचे दया तो कैसे आती है, व्यवहार करुणा भी गई। ऐसा समय सार पठन पाठन करने से ऐसा कभी नहीं लेना, संभाल कर स्वाध्याय करने जैसी चीज है।
प्रश्न, शुभोपयोग व शुद्धोपयोग का कथनचित साध्य साधक पना है, कृपया स्पष्टीकरण कीजिए।
वो व्यवहार से साध्य साधन कहा जाता है कि जब शुद्ध उपयोग न हो तब पांच महाव्रत का परिणाम, देशव्रत का परिणाम शुभ उपयोग होता है। तो शुभ उपयोग के काल में आत्मा का चिंतन ज्यादा चलता है और शुभ उपयोग के काल में नहीं चलता है। और दूसरा उसका अभाव होकर हुआ तो व्यवहार से साधन साध्य साधन कहा जाता, व्यवहार नहीं का कथन है।
क्या सविकल्प द्वारा निर्विकल्प नहीं होता है?
सविकल्प द्वारा कभी भी आत्मा निर्विकल्प नहीं होता है, सविकल्प का अभाव होने से ही निर्विकल्प ज्ञान आता है। वो मोक्ष मार्ग प्रकार तिथि में है कि सविकल्प द्वारा निर्विकल्प की प्राप्ति, वो तो साधक का विचार चलता है उस सविकल्प दशा में, मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ, अभेद हूँ, सामान्य हूँ, इसी सविकल्प ज्ञान के काल में विचार चलता है, बाद में सविकल्प छूट जाता है, निर्विकल्प ज्ञान आ जाता है।
जिनेंद्र भक्ति आजकल बहुत कम लोगों में देखने में आती है, जबकि शास्त्र भक्ति अधिकांश लोगों में रहती है, इसका क्या कारण है? जबकि जिनेंद्र तो उनकी वाणी से स्वयं बड़े हैं।
जिनेंद्र की भक्ति आती है, साधक को भी आती है, और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को भी होती है, और सामान्य जैनी को भी होती है, मगर वो भक्ति का राग में वो जीव एकाकार हो जाता है, उसको मालूम नहीं है कि ये राग है, न राग से जुदा मैं आत्मा हूँ, वो उसके काल में वो भूल जाता है, न शास्त्र स्वाध्याय में वो सजाग हो जाता है, ओहो भगवान की भक्ति का राग, वो भी भगवान ने आश्रम तत्व कहा, इसलिए ये स्वाध्याय की महत्ता ज्यादा बताया। गुरुदेव ने भक्ति तो आती है देवगुरु शास्त्र प्रति, उसमें तो कोई प्रश्न नहीं है, मगर ये भक्ति से ज्यादा स्वाध्याय की कीमत है, क्योंकि स्वाध्याय में वेद ज्ञान का विचार की जागृति हो जाती है।
श्रद्धा ज्ञान एवं चारित्र प्रदान कथन तथा श्रद्धा प्रदान ज्ञान का कथन, इनका स्पष्टीकरण कीजिए।
श्रद्धा प्रधान ज्ञान का कथन ऐसा है कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा व्यवहार श्रद्धा, छद्रव्य की श्रद्धा व्यवहार श्रद्धा, नव तत्व की श्रद्धा व्यवहार श्रद्धा, मगर श्रद्धा की पर्याय में निश्चय व्यवहार होता नहीं है। श्रद्धा की पर्याय में निश्चय श्रद्धा ने व्यवहार श्रद्धा ऐसा भेद है नहीं, मगर चारित्र का वो विकल्प के साथ में लेकर वो व्यवहार श्रद्धा नाम कहा जाता है। श्रद्धा के ज्ञान प्रधान श्रद्धा की कथन चलती है, दृष्टि प्रधान श्रद्धा में शुद्धात्मा का श्रद्धान कोई श्रद्धान है, और ज्ञान प्रधान श्रद्धान की बात करें तो सच्चा देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान करो, गुदेव गुरु शास्त्र के श्रद्धान छोड़ दो, ऐसा आवे वो ज्ञान प्रधान है कथन। और दूसरा क्या, पहला वाक्य क्या है? ज्ञान प्रधान श्रद्धान बात किया, और पहला वाक्य क्या है?
तीसरे तो इसमें था श्रद्धा प्रधान एवं ज्ञान प्रधान एवं चारित्र प्रधान कथन से कहता,
श्रद्धा प्रधान और ज्ञान प्रधान, ज्ञान प्रधान कथन में छद्रव्य की श्रद्धा वो श्रद्धा है, नव तत्व की श्रद्धा श्रद्धा है, ज्ञान प्रधान कथन है, उसमें नियम नहीं है, मगर शुद्धात्मा का श्रद्धान उसमें तो नियम हो कि सम्यक दर्शन होता ही है, मगर जिसको सम्यक दर्शन होता है उसके पूर्वे वो कुदेव कुगुरु शास्त्र के श्रद्धान छोड़ता है, साचा देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान में आ जाता है, वो श्रद्धान नहीं है, मगर वो ये राग मिश्रित ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा मूलक, श्रद्धा मूलक राग तो व्यवहार श्रद्धा कहा जाता है, राग है, श्रद्धा की पर्याय में राग नहीं होता है, चारित्र की पर्याय में राग होता है।
प्रश्न, दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है या नहीं?
दृष्टि का विषय में पर्याय शामिल नहीं है, भिन्न है, रहती है। अभी एक ये प्रकार चलता है बहुत, गुरुदेव के जाने के बाद दुख की बात है, हाँ चलता है, विपरीत चालू हो गया,
क्या चलता है?
पर्याय के साथ शामिल करना, वो श्रद्धा का विषय है, पर्याय से भिन्न आत्मा नहीं है, श्रद्धा का विषय में पर्याय लेना, हाँ
ये कहाँ चलता है?
ये तो सारा हिंदुस्तान में कोई खूना में चलता है, वो श्रद्धा विपरीत है, गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा, कुनकुन भगवान ने ऐसा नहीं कहा, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में नहीं आया, और अनुभव में ऐसा नहीं आता, पर्याय से निरपेक्ष आत्मा है और श्रद्धा का विषय, पर्याय का स्पर्श नहीं है द्रव्य को, छूती नहीं है, हाँ।
सुपर प्रकाशक के संबंध में
विशेष राज में आया कि पर्याय जो द्रव्य से भिन्न है, तो खड़ा रखा उसको और हाथ पकड़ा कि देखो ये हाथ शरीर से भिन्न है। करे भाई वो तो प्रमाण का विषय है, उसने कहा। मैं कहता हूं कि दृष्टि का विषय में पर्याय नहीं आती है, ऐसी चर्चा चली। बोलो, हवा गप्पा चले। ऐसा होता है, ऐसा होता है। भगवान महावीर के चले जाने के बाद ऐसा हुआ ना, ऐसा होता है थोड़े टाइम के लिए, बाकी तो अच्छा टाइम आने वाला है। ये जो महाविद्यालय चलती है वो, उसका जो विद्यार्थी है इधर अभ्यास करने वाला, वो गुरुदेव की वाणी गाती रखेगा भविष्य में।
विकल्प सहित निर्णय करना सामान्य श्रद्धा और निर्विकल्प अनुभव करना विशेष श्रद्धा, क्या यह ठीक है?
नहीं, सामान्य श्रद्धा नहीं, विशेष श्रद्धा ऐसा नहीं। विकल्प से निर्णय करना और वो उसका नाम यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान हो गया कि मेरा आत्मा ज्ञायक ही है, पर्याय मात्र से भिन्न है, ऐसा श्रद्धा संबंध का जो ज्ञान, श्रद्धा का विषय जो है उसका ऐसा ज्ञान होता है, तो उसको इसका जो निर्णय हुआ उसको सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। बाद में अनुभव हुआ तो सच्चा सम्यक दर्शन कहा जाता है।
उपयोग का परिचय हनन नहीं होता, इसका क्या अर्थ है?
जो शुद्ध उपयोग सम्यक दृष्टि को हो गया, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, वो सम्यक ज्ञान को नाश करने की शक्ति कोई जगत के अंदर पदार्थ में है नहीं। नारकी में क्षणिक महाराजा है आज, उसको शुद्ध परिणति है, कभी कभी शुद्ध उपयोग भी होता है, तो उपयोग जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान को नाश करने की शक्ति नारकी में नहीं है, नारकी का जीव में भी नहीं है। कोई हनन नहीं कर सकता, कोई हरी सकता नहीं है, अपनी निधि को श्रद्धा से च्युत नहीं करता है कोई पर पदार्थ, हरण नहीं होता है।
द्रव्य से पर्याय भिन्न है तो पर्याय कहाँ से आती है एवं कहाँ चली जाती है?
पर्याय द्रव्य में से आती है न द्रव्य में चली जाती है, वो प्रमाण ज्ञान का विषय है। प्रमाण ज्ञान और नई ज्ञान जो जुदा जुदा समझ में आवे तो जिनागम का रहस्य समझ में आ जाएगा, निकट समझ में नहीं आएगा। पर्याय अदर से नहीं आती है, आकाश में से पर्याय नहीं आती है, आकाश में से पर्याय आवे ने आत्मा के साथ जॉइंट हो जावे, ऐसा नहीं है। उपयोग आत्मा में से आता है ना, उपयोग आत्मा में डूब जाता है। तो जो द्रव्य में से आता है ना, द्रव्य में पर्याय जाती है, वो प्रमाण ज्ञान का विषय, उसमें पदार्थ की सिद्धि होती है, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। पदार्थ की सिद्धि और है ना, प्रयोजन की सिद्धि और है। पदार्थ की सिद्धि तो पर्याय द्रव्य में से आती है ना, द्रव्य में व्यय हो जाती है, तुच्छ भाव नहीं होता है उसका, तो वो पदार्थ की सिद्धि हुई। और पदार्थ की सिद्धि करके बाद में वो पर्याय कहां से आती है ने कहां से जाती है उसे अलग छोड़ देना। मैं तो त्रिकाल ज्ञायक ध्रुव परमात्मा हूं, परिपूर्ण वर्तमान में हूं। उसको जो देखती है पर्याय, उसका नाम सम्यक दर्शन। ये जब विद्यालय का शुरुआत थी ने, उद्घाटन शुरुआत, तब मैं इधर आया था, तब घूमने सांझ को जाता थे, और अभय कुमार साथ में भी था, उसका गुरुजी के साथ में था, गुरुजी कहते हैं ना, तो कहा कि ये आप सब भावी आचार्य है जो जैन तत्व को, जैन दर्शन को जैसा है ऐसा प्रतिपादन करने वाला वो इधर से पाकेगा। प्रश्न का क्या करें अभी तो ये गुरु जी बैठा है,
ये कला कहां से सीखी गई, असली प्रश्न डाल देना।
अभी आने का तो भाव है मगर शक्ति नहीं है शरीर की, क्या करें, भाव तो रहता है मगर शक्ति विद्यार्थी प्रत्येक तो हमको बहुत धर्म को टिकाने वाला ये सब विद्यार्थी इधर क्या
यही
रहने में क्या दिक्कत है? हाँ वो ठीक, तो आना जाना नहीं, वो भाई का ये रास्ता निकाला जैसे मऊ भाई इधर रहते थे, इधर आप रह जाओ बस। वो सब संगठन तो है इधर मकान की,
बिल्कुल मकान के अध्यक्ष रहने का ही पद्धति है।
कौन अध्यक्ष? आपने सर बना दिया है, तो अध्यक्ष की शक्ति नहीं है मेरे में। सफर प्रकाशक के संबंध में विशेष खुलासा कीजिए। सफर प्रकाशक संबंध में खुलासा की जरूरत है, बहुत जरूरत है सफर प्रकाशक के बाबत में। उसके अंदर ऐसा है कि स्वपर प्रकाशक का दो प्रकार है। नियम सार में एक ही जगह ये वो बात आई है कि स्वपर प्रकाशक भी कथनचित है, एकांत नहीं है। केवल ज्ञान का जब प्रकरण चला, शुद्ध उपयोग का नियम सार का छला अधिकार, उसमें टीकाकार आचार्य महाराज भावी तीर्थंकर है, वो भी जैसे अपना गुरुदेव भावी तीर्थंकर होने वाला है, निश्चित है, उसमें कोई फेरफार नहीं है। इसे नियम सार का टीकाकार है, उसके अंदर अपने आप हाथ से लिखा है 212 नंबर का कोष में, तो वो भावी तीर्थंकर होने वाला है, केवल ज्ञान होने वाला है। और केवल ज्ञान का स्वरूप स्वपर प्रकाशक है, वो तो सारा शास्त्र में जिनागम में भरा है, मगर कथन की स्वपर प्रकाशक है वो एक ही जगह निकलता है, वो मार्मिक बात है। कथनचित शब्द स्वपर प्रकाशक के आगे विशेषण लगाया कि स्वपर प्रकाशक भी कथनचित है। कथनचित कहकर क्या कहा उसने कि व्यवहार का निषेध कर दिया। व्यवहार का निषेध क्या किया कि सारे जगत में इसी चलती है बात कि केवल ही भगवान अपने को जानता है, लोकालोक को जाने, उसका नाम स्वपर प्रकाशक है। स्व के साथ पर को मिलान करके स्वपर प्रकाशक, इसे सब सारे समाज स्वपर प्रकाशक का एक ही अर्थ उसको मालूम है। दूसरा स्वपर प्रकाशक का अर्थ ख्याल में आता नहीं है, तो उसने लगाया कि स्वपर प्रकाशक भी कथनचित है। कथनचित के अंदर निश्चय नहीं से स्वपर प्रकाशक और व्यवहार नहीं से भी स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक कॉमन रहते हैं, स्वपर प्रकाशक शब्द को कॉमन रहा, मगर उसमें निश्चय से स्वपर प्रकाशक और व्यवहार से स्वपर प्रकाशक, तो श्यादवाद आ गया। स्वपर प्रकाशक में श्यादवाद खड़ा हो गया। श्यादवाद यानी कथनचित, कथनचित स्वपर प्रकाशक, निश्चय से स्वपर प्रकाशक और व्यवहार से स्वपर प्रकाशक। वो उसमें भी स्वपर प्रकाशक निश्चय होने के बाद स्वपर प्रकाशक व्यवहार का जन्म होता है, उसमें मर्म लगा दिया उसने कि स्वपर प्रकाशक है, व्यवहार से स्वर पर को जानता है, तो स्वर पर का स्वपर प्रकाशक का व्यवहार का जन्म किसको होता है कि निश्चय से स्वपर प्रकाशक का जन्म होता है, वो तो निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। पर्याय में निश्चय से स्वपर प्रकाशक का स्वरूप क्या है कि जब आत्मा का आत्मा को अनुभव होता है, तो एक ज्ञानमय आत्मा को जानता है, ज्ञान गायक को जानता है, और गायक को जाना साथ में ज्ञान गुण के अलावा आनंद गुण को भी जाना, श्रद्धा गुण को भी जाना, तो ज्ञान ज्ञान को जाना वो स्वप्रकाशक है, और ज्ञान ने श्रद्धा गुण को, चारित्र गुण को, स्थिरता को, आनंद को, सबको जाना वो पर है। ज्ञान स्व है, अंदर का गुण है तो आत्मा का गुण, मगर ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान के अलावा सब गुण पर है। ज्ञान स्व है तो सारा अनंत गुणों अनंत पर्याय ये पर है, तो अंदर का स्वपर प्रकाशक अनुभव के काल में प्रकट होता है, वो निश्चय है। निश्चय स्वपर प्रकाशक जिसको होता है उसको स्वपर प्रकाशक बाहर में होता है, बाकी तो सब स्वपर प्रकाशक शब्द में रह जाता है, भाव में आता नहीं है, वो तो अज्ञान है। और तीसरा, अभी जो स्वपर प्रकाशक निश्चय की बात मैंने किया, वो स्वपर प्रकाशक कैसे उत्पन्न होता है? निश्चय स्वपर प्रकाशक के निश्चय स्वपर प्रकाशक इसको होता है कि जो परिणाम को जानने का बंद कर देता है, अपना परिणाम, परिणाम जो है पर प्रकाशक, परिणाम को जानना पर प्रकाशक कहना भी वो ज्ञान की अपेक्षा से पर है। अभी उसको जानना जब बंद करता है, एक इला अपना सामान्य चैतन्य भगवान आत्मा को जानने की प्रवृत्ति होती है, तब एक इला स्वप्रकाशक होता है। स्वप्रकाशक ज्ञान लक्षण से आत्मा अनुभव में आता है। स्वपर तो ये फल आया, मगर फल कभी आता है स्वपर का? स्वपर प्रकाशक कभी होता है निश्चय कि स्वप्रकाशक ज्ञायक आत्मा उपाधि। पर्यार्थिक चक्षु सर्वथा बंद कर दे, तेरा परिणाम को जानने का बंद कर दे। करता तो तेरा स्वभाव है ही नहीं, जानना व्यवहार है, तो उसको जानना बंद कर दे। और उगाड़ेला द्रव्यार्थिक चक्षु ओढ़े, अपना शुद्धात्मा सामान्य का अवलोकन, विशेष का नहीं, सामान्य को अवलोकता है, विशेष को अवलोकन नहीं करता। ऐसा अनुभूति के काल में ज्ञान का विषय एक इला शुद्धात्मा उपाधि जानने में आता है, उसका नाम शुद्ध नहीं है। और शुद्ध ज्ञान बड़े केवल शुद्धात्मा को जानता है, उसको शुद्ध केवड़ी भगवान कहते हैं, वो निश्चय है। उस शुद्ध ज्ञान को जानता है वो व्यवहार है, शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्धात्मा को जानता है, केवल शुद्धात्मा को, शुद्ध ज्ञान को नहीं। क्या कहा? ये स्वप्रकाशक की बात चलती है। स्वप्रकाशक के बिना अंदर का स्वपर प्रकाशक का जन्म नहीं होता है, तो अंदर का स्वपर प्रकाशक निश्चय का जन्म नहीं होता है, तो बाहर का स्वपर प्रकाशक का जन्म होने के बाद तो होती ही नहीं, एजेंडा पर है ही नहीं हो। ऐसा स्वप्रकाशक पूर्वक निश्चय स्वपर प्रकाशक अनुभव के काल में होता है। और जब साधक बाहर में आता है तो अपना ज्ञान के द्वारा आत्मा भी जानने में आ रहा है, और पर गए देव गुरु शास्त्र भी जानने में आ रहा है, उसका नाम स्वपर प्रकाशक है। वो स्वपर प्रकाशक को पंचाध्याय कर्ता ने व्यवहार में डाला है, असत लक्षण लिखा है। बात सूक्ष्म है, स्वपर प्रकाशक के बाने नीचे भी वो अंतर्मुख नहीं होता है। स्व को भी जानता हूं, पर को भी जानता हूं, अरे पर को जानता नहीं हूं, स्व को ही जानता हूं। ज्ञान ज्ञायक को जानता है, अपना परिणाम को जानता नहीं है। परिणाम को करने का तो निषेध पहले कराते आता है, मगर परिणाम को जानना बंद कर दे तब आत्मा का दर्शन होगा। तो उसका नाम स्वप्रकाशक है। शुद्ध नहीं का विषय एक इला शुद्ध आत्मा है, शुद्ध नहीं का विषय शुद्ध आत्मा भी है, और शुद्ध नहीं का विषय परिणाम भी है, और परिणामी भी है, ऐसा नहीं है। स्वप्रकाशक पूर्वक निश्चय स्वपर प्रकाशक, अने निश्चय स्वपर प्रकाशक पूर्वक व्यवहार स्वपर प्रकाशक का जन्म होता है। बराबर है? वो बारे में देवलाली में भाई ने एक शब्द कहा था कि स्वप्रकाशक के नामे ऐसा कुछ शब्द कहा,
नाम भी है बदनाम भी है।
हाँ, नाम भी है ने बदनाम भी है ऐसा कहा था। ये व्यवहार का पक्ष, पर्याय का व्यवहार, पर्याय का व्यवहार का पक्ष भी जीव को मार रहता। जानने के बाना नीचे भी ये बहिर्मुखता होती है। पर को जानना तो मेरा स्वभाव है, पर को मेरा है क्या मानता हूं, पर को जानना मेरा स्वभाव है। तो ज्ञान पर का है कि स्व का? ज्ञान तो स्व का है, ज्ञान तो स्व का, आत्मा का है। तो आत्मा जानने में नहीं आया, जिसका ज्ञान नहीं है उसको जानने में आया, ये क्या एक शंकर दोष हो गया, विख्यात का दोष, अध्योषान हो जाता है। बंध अधिकार में आचार्य भगवान ने फरमाया ये जो कुनकुन भगवान का नाम तीसरा है यथार्थ है, यथार्थ है। बंधधिकार में लिखा कि मैं पर को जान जीवाता हूं, मार डालता हूं, सुखी दुखी करता हूं, वो तो अध्योषण है ही, वो तो अध्योषण, वो तो मिथ्यात्व का दोष है। मगर मेरे ज्ञान में धर्मास्तिकाय सर्वज्ञ भगवान ने कहा हुआ, धर्मास्तिकाय का शब्द नियमत्मा नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने कहा हुआ धर्मास्तिकाय को मैं जानता हूं, जा अध्योषण हो गया। हा हा हा, पर को जानना मेरा स्वभाव है, धर्मास्तिकाय तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, इसको जानना उसमें अध्योषण कैसे आया कि अपने को भूलकर पर के साथ एकत्र हो जाती है बुद्धि। तो ये जब प्रकरण चलता बंध अधिकार का, तब भूलचंद सिद्धांत शास्त्री वहां आए थे, सोनगढ़ में भी था, वो सुनकर चुप हो गया। ये क्या है, धर्मास्तिकाय को जानने में अध्योषण, मिथ्या करने में तो मिथ्या तो है, करता में तो मिथ्या, तो राग का करना ऐसी बुद्धि अभिप्राय हो तो अध्योषण है, मगर राग को जानना अध्योषण है। आहा, तो व्याख्यान पूरा हो गया। मैं और पंडित जी और खिमचंद भाई मुरबी खिमचंद भाई तीन घूमने को गए सांझ को, तो फुलचंद सिद्धांत शास्त्री ने प्रश्न उठाया रास्ता में कि ये क्या आया कि धर्मास्तिकाय को जानना मिथ्या तो है अध्योषण, मारना का अभिप्राय जीवाड़ा नो अभिप्राय तो मिथ्या तो है। मैंने कहा कि पंडित जी, क्योंकि बड़ा पंडित जी है ना वो, तो मैंने कहा पंडित जी अभी 15 मिनट में अपने को वापिस वहां जाना है, तो गुरुदेव को प्रश्न करना, और स्तुति पूरी हो गई। पहला प्रश्न किया कि साहब आज आया बंध अधिकार में कि धर्मास्तिकाय को जानना अध्योषण है, वो क्या है कि ज्ञान जिसका है उसको नहीं जाना, अनुपर को जानने में गया उसका नाम अज्ञान अध्योषण है। बोलो, जानने के बाने नीचे भी अज्ञान रह जाता है, करने में तो प्रगट अज्ञान है ही, याता को करता मानना ओ तो हा 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 मोटा अज्ञान है, मगर राग को जानना आत्मा को भूलकर उसका नाम अज्ञान है, आत्मा को जानने के बाद राग को जानना उसका नाम व्यवहार है, निश्चय पूर्वक व्यवहार आता है, निश्चय के बिना व्यवहार कहाँ आता है। टाइम हो गया 5 का, बोलो परोपकारी सद्गुरुदेव नो जय।